नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से अध्ययन के लिए आप तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दानिय्येल नबी की पुस्तक से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में भी हम देख रहे थे कि दानिय्येल परमेश्वर की निकटता में प्रार्थना करता है और इतना ही नहीं, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और वह व्यक्ति सिद्ध ठहरता है। और तब हम पाते हैं कि जिब्राइल दूत उसके उत्तर को लेकर के उस तक पहुंचता है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम दानिय्येल के जीवन से और इस पुस्तक से सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके पवित्र चरणों के पास बैठकर आपके वचनों में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उनके हृदय और मन को आप तैयार करें, आप उनसे बोले और बातचीत करें ताकि आज का वचन प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन जीवित है, जो दो धारी तलवार से भी तीखी और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आज आप हमारे हृदयों को छेदें, हमसे बोले और बातचीत करें, हमारे जीवनों से बातचीत करें। जी हाँ, प्रत्येक श्रोता आप में आनंदित होने पाए। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है अपने उन श्रोता मित्रों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, बीमारी हालत में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें शांति दें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, उनके पापों से आप उन्हें स्वतंत्र करें, उनके पापों को आप क्षमा करें, उन्हें प्रार्थना और विश्वास का जीवन दें। प्रभु, आज के वचन से हमें आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानिय्येल नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय को निकाल लीजिए। पिछले अध्ययन में हम पढ़ रहे थे दानिय्येल के बारे में कि दानिय्येल की प्रार्थना सुनी गई और उसका उत्तर भी उसे मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दानिय्येल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 24 पद में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है 70 सप्ताह। यहाँ सप्ताह का अर्थ 7 दिन नहीं है, यह 7 वर्ष है। यहाँ पर 7 को इब्रानी भाषा शब्द का अर्थ है नाप, जैसे दर्जन। अतः यहाँ 70 सप्ताह का अर्थ है 7 × 70। अब चाहे वह 70 नाप हो, 70 दिन हो, 70 महीने हो या 70 वर्ष हो। इस संदर्भ में दानिय्येल ने यिर्मयाह से 70 वर्ष की भविष्यवाणी पढ़ी है कि उनकी बंधुआई 70 वर्ष होगी क्योंकि उन्होंने 70 विश्राम वर्षों का उल्लंघन किया था, अर्थात कुल समय सीमा 70 × 7 490 वर्ष की थी, जिसमें उन्होंने 70 विश्राम वर्षों का पालन नहीं किया था और इसी कारण उन्हें 70 वर्षों की बंधुआई का दंड दिया गया था। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं एक सप्ताह अर्थात 7 वर्ष, 70 सप्ताह 490 वर्ष। 70 सप्ताहों को 3 भागों में विभाजित करने पर 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह आता है। दानियल उलझन में पड़ गया कि 70 वर्ष की बंधुआई अन्य जाति की विश्व प्रभुता में कैसे बैठेंगे, जिसका उल्लेख अध्याय 7 और 8 के दर्शनों में अति स्पष्ट व्यक्त किया गया है। वह सोच रहा था कि 70 वर्ष के बाद वे स्वदेश लौट जाएंगे और प्रतिज्ञा का मसीहा आएगा और दाऊद को प्रतिज्ञा किया हुआ राज्य स्थापित करेगा। यह कैसे सच होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि वह इन परस्पर विरोधी भविष्यवाणियों के कारण समय में मेल नहीं बैठा पा रहा था। मेरे प्रियो, 70 सप्ताह 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसराइल का राज्य तुरंत नहीं आएगा। 70 × 7 को अपना समय पूरा तो करना ही होगा। जी हाँ, यह 70 सप्ताह अन्य जातियों के समय के साथ साथ चलते हैं। अन्य जातियों के समय में ठीक ठीक बैठाने के लिए इस समय को विभाजित किया जाता है। जैसा लिखा है, ठहराए, ठहराए का मूल अर्थ है काटा जाना। इन 70 सप्ताहों को काटा जाना होगा, जैसा कि अगला पद प्रकट करेगा। इसराइल के 70 सप्ताह और अन्य जातियों का समय दोनों की पूर्ति एक साथ होगी प्रभु यीशु के फिर से आने पर। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी की सही समझ के लिए इसे जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 70 सप्ताह तेरे लोगों अर्थात दानियल के लोगों के लिए ठहराए गए हैं। दानियल के लोग इसराइल हैं और तेरे पवित्र नगर अर्थात यरूशलेम के लिए हैं। इन 70 सप्ताहों अर्थात 490 वर्षों में 6 बातों का होना अवश्य है। अपने इस अध्ययन में हम देखेंगे कि 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, अब केवल 1 सप्ताह का पूरा होना शेष है। इस समय में होने वाली 6 बातें हैं जिसे हम देखते हैं। आइए देखें। पहली बात, अपराध का होना बंद हो अर्थात इसराइल के अपराध बंद हो। क्रूस ने इसराइल के पापों के लिए मुक्ति उपलब्ध करवाई थी, परंतु सब ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज पृथ्वी की छोर तक सब मनुष्यों के पाप की मुक्ति का सुसमाचार पहुंच गया है, परंतु लिखा है कि अंतिम सप्ताह में परमेश्वर कहता है, जकर्याह की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, अभी तक आत्मा उंडेला नहीं गया है। आपको इसराइल देश देखना है और आप जान लेंगे कि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। दूसरी बात हम देखते हैं, पापों का अंत। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर इसराइल के राष्ट्रीय पापों का अंत हो जाएगा। आज वे अन्य किसी भी जाति या राष्ट्र के समान हैं। वे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों ही रूपों में पापी हैं। उन्होंने राष्ट्र रूप में अनेक भूल की हैं, परंतु परमेश्वर उसका अंत कर देगा। तीसरी बात हम देखते हैं, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। मेरे प्रियो, 70 सप्ताह के इस समय में परमेश्वर ने उनके लिए प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मुक्ति का प्रबंध किया है। यह निश्चय ही यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए है। और तब हम चौथी बात देखते हैं, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। उस समय जब प्रभु यीशु 490 वर्ष बाद फिर से आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। यहां हम पांचवी बात देखेंगे, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, अर्थात सब बातें पूरी होंगी, धर्मशास्त्र की सब भविष्यवाणियां पूरी होंगी। और छठवीं बात है, परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा, अर्थात प्रभु के हजार वर्ष के राज में मंदिर के परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाएगा, जैसा कि यहेजकेल नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ेंगे और दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 25 से 27 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु में दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, इससे 490 वर्ष के आरंभ के समय को देखना भविष्यवाणी की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय अन्य जातियों के समय में जाता है, इसलिए इसे सांसारिक इतिहास में बैठना है और अन्य जातियों के समय में किसी न किसी तिथि से आरंभ होना है। इससे आरंभ के समय के अनेक सुझाव हैं। कुसरो का आदेश, एज्रा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं। दारा का आदेश, एज्रा 6 अध्याय उसके 1-12 पद में। शेयर्स का आदेश, 7वां वर्ष और तब एज्रा 7 अध्याय उसके 11-26 पद में। मेरे विचार में शेयर्स के 20वें वर्ष में नहमिया 2 अध्याय उसके 1-8 पद में हम देखते हैं, तब 25 पद की अनिवार्यता को हम पूरी करते हुए देखते हैं। यरूशलेम के पुनः निर्माण की आज्ञा निशान का महीना 445 ईस्वी पूर्व की है, अतः यह हमारा आरंभिक समय होगा। मेरे प्रियो, प्रथम 7 सप्ताह अर्थात 49 वर्ष के बाद हम 397 ईस्वी पूर्व में आते हैं, जो मलाकी भविष्यद्वक्ता का समय था और पुराने नियम का अंतिम समय है। यह समय परेशानी का युग था, जैसा नहमिया और मलाकी दोनों दर्शाते हैं। 62 सप्ताह अर्थात 434 वर्ष बाद प्रभु यीशु का समय आता है। सर रॉबर्ट एंडरसन ने इस समय सारणी को दर्शाया है। निशान की पहली तिथि से 10वीं तिथि सन 32 तक 173,880 दिन होते हैं। उन्होंने उसे यहूदी वर्ष के 360 दिनों से विभाजित किया तो उन्हें 483 वर्ष अर्थात 69 सप्ताह मिले। इस दिन प्रभु यीशु गधे पर सवार यरूशलेम आए थे। पहली बार उन्होंने स्वयं को प्रगट में मसीह दिखाया था। मेरे मित्रों, 69 सप्ताहों के बाद समय का अंतराल है। 69वां सप्ताह और 70वें सप्ताह के मध्य दो महत्वपूर्ण घटनाओं का होना आवश्यक है। पहली बात हम देखते हैं, मसीह काटा जाएगा। मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जो सुसमाचार का महान भेद एवं सत्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याचकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब हम दूसरी घटना को देखते हैं, यरूशलेम का विनाश, जो सन 70 में हुआ था रोमी तीतुस के द्वारा से। अंतिम सप्ताह अर्थात 70वां सप्ताह, यह 7 वर्ष का सप्ताह भविष्य में होगा और काल क्रम के अनुसार 69वें सप्ताह के बाद नहीं है। 69वें सप्ताह और 70वें सप्ताह के मध्य का समय अनुग्रह का युग है। भविष्यद्वक्ता इस समय के बारे में नहीं जानते थे। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1-12 पद में, पहला पत्रस की पत्र 1 अध्याय उसके 10-12 पद में। 70वां सप्ताह अंत का समय है और अभी पूरा नहीं हुआ है। तब हम देखते हैं प्रधान, रोमी प्रधान जो दानियल 7 का छोटा सिंह है, वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का पशु है। पृथ्वी पर से कलीसिया के उठाए जाने के बाद वह इसराइल के साथ वाचा बांधेगा, इसराइल उसे अपना मसीहा मान लेगा, परंतु सप्ताह के बीच वह मंदिर में मूर्ति स्थापित करके अपनी वाचा को तोड़ देगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यह विनाश लाने वाली घृणित वस्तु है। इसराइल जिसे प्रभु राज समझेगा, वह वास्तव में महाक्लेश अर्थात महाकष्ट का समय अर्थात युग होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15-26 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मत्ती 24 उसके 27-31 पद में भी व्यक्त है कि प्रभु यीशु के आगमन पर यह भयानक समय समाप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, हम अनुग्रह के युग में वास करते हैं और दानियल का 70वां सप्ताह, जिसे प्रभु यीशु ने महाक्लेश का समय कहा है, वह अभी भविष्य की एक घटना है। अभी हुई नहीं है, परंतु होने वाली है। यह महाक्लेश बहुत ही भयानक होगा, महासताव का समय होगा। लोग शैतान के अधीनता में होंगे और वह अपनी रीति से लोगों को सताएगा। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए आपके लिए भी यह 70 सप्ताह की बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के निकटता में ला सकें। आज हमारे विश्वास को भी परखने और जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम दानियल की तरह अपने जीवन को ढाल सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं और आपने इस बात को जान लिया है कि महाक्लेश अभी आने वाला है। मेरे प्रियो, अगले अध्ययन में और भी हम महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। तब तक आप सब प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।